ओम शांति। आज हमारे मध्य हमारे इस महान यज्ञ के ऐसे एक अनमोल रतन विराजमान है जो साकार मम्मा बाबा की पालना में पले, बाबा से मार्गदर्शन लेते रहे, बाबा से पत्र व्यवहार भी किया और विशेष जिस दिन अव्यक्त बाबा ने देह त्याग किया तो बाबा का वो जो फरिश्ता स्वरूप है आप उसके प्रत्यक्ष दर्शी भी रहे। हमारे परमादरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई जी, आपको 1962 में बाबा का ज्ञान मिला विद्यार्थी जीवन में। आपने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में आपने 28 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। 1996 में जियोफिजिसिस्ट के पद से, सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट के पद से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किया। आप साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट विंग के चेयरपर्सन हैं। आपके नेतृत्व में लगभग 30 अभियान एनवायरमेंटल अवेयरनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत निकाले गए और पर्यावरण के क्षेत्र में आपके अतुलनीय योगदान हेतु 1992 में भारत के एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा आपको पर्यावरण श्री के सम्मान से नवाजा गया और 2013 में राजस्थान के राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको ग्रीन आइडोल के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे आज हमारे पास हमारे यज्ञ में गिनती के ही अनमोल रतन हैं जिन्होंने बाबा मम्मा की पालना ली है। तो आदरणीय भाई साहब की एक बहुत बड़ी खूबी जो मैंने इतने वर्षों में देखा है वो ये है कि शरीर की उम्र कितनी ही क्यों न हो लेकिन भाई साहब के अंदर उमंग उत्साह बहुत बहुत अधिक रहता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि अभी मई 25 तारीख से लेकर जून 12 तारीख तक कितने दिन होते हैं, 19-20 दिन होते हैं, आप पूरे गुजरात और महाराष्ट्र के अभियान में शुरू से लेकर एंड तक रहे। और अभियान में आपको पता है गाड़ी स्टॉप होते होते लेट होती है और अगले दिन गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भाई साहब के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी, उम्र को गर हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले न चले मन उड़ता परिंदा रखिए। तो ऐसे ही एक महान विभूति हमारे बीच है। बहुत सुंदर विषय पर आदरणीय भाई साहब प्रकाश डालेंगे, एकाग्रता से एकर स्थिति।
ओम शांति। आदरणीय हमारी मीठी बहन जी ने तो बहुत बहुत वर्णन कर दिया कई विषयों पर, स्टडीज पर, बाबा मम्मा पर। सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड कौन सा है? बहन जी ने तो बताया संगम युग का सबसे बड़ा अवार्ड है कौन सा, बाबा मम्मा की पालना का। लेकिन उसमें भी अगर देखें तो जो उससे भी कुछ ऊंचा अवार्ड है वो है साकार बाबा का अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति का उसका अवलोकन करना, उसको देखना, समझने का पुरुषार्थ करना। तो वो सौभाग्य भी मिला। एक्चुअली जैसा बहन जी बता रहे थे, पढ़ाई इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद ONGC में पोस्टिंग हुई और आसाम में थे उन दिनों। और आसाम में बाबा ने ही एक तरीके से भेजा था, और बाबा ने कहा था बच्चे कोई बात नहीं, जा रहे हो इतनी दूर क्योंकि हमने थोड़ा अनिच्छा जैसी हमारे शब्दों में आई थी कि बाबा इतनी दूर, वहाँ कोई भी सेंटर नहीं, गीता पाठशाला नहीं, एक भी भाई बहन नहीं। ये 1968 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 67 की। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, वहाँ नहीं, बाबा तो साथ में है ही और समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा। बस तो बाबा ने ये उस बात पर हमने पहले तो ध्यान दिया नहीं और वहाँ गए और बाबा की करामात देखी। जैसे बाबा बोलता है कि जब मैं देखता हूँ समझाने वाला इतना होशियार नहीं है और समझने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति आए हुए हैं, तो बाबा क्या करता है, हैं? बाबा कई बार कहता है मैं प्रवेश करके उनके द्वारा समझा देता हूँ। तो वास्तव में हमें भी सेवा का कोई विशेष अनुभव नहीं था, स्टूडेंट पीरियड में तो पढ़ाई पर ही ध्यान रहता है और उसके बाद फिर वहाँ पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग थी। लेकिन बाबा ने वास्तव में अपना जो वचन जो है उसको एक बार नहीं अनेक बार जैसे निभाया और हम अनुभव करते थे कि बाबा ही जैसे समझा रहा है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल रूप भी देखने में आता था कि बस बाबा समझा रहा है और समझने वाली आत्माएं चाहे छोटी बच्चियां हों चाहे कोई और थोड़े बड़े हों वो ध्यान में साक्षात्कार में चले जाते थे। और क्योंकि ऐसी जगह जहाँ ज्ञान का ABCD भी न पहुँचा हो पहले कभी, और वहाँ पर लोगों में विश्वास कैसे जमे, तो भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज होती है। तो करण करावनहार बाबा जैसे बस इधर ज्ञान सुनाते सुनाते समझाते और उधर वो छोटे बच्चियां भी कई बार उनकी माताएं भी ध्यान में साक्षात्कार में चले जाते थे और कृष्ण नई दुनिया साक्षात्कार में बहुत कुछ देखते, रास विलास। तो अपने ही बच्चे बच्चियों से तो उन्हें विश्वास तुरंत हो जाता था और इस प्रकार से वहाँ का पूरा बिजनेस आसाम का मारवाड़ियों के हाथ में है। तो मारवाड़ी परिवार के परिवार बहुत सब आने लगे और इस रीति से थोड़े समय में उन्होंने मकान भी ले लिया और इस प्रकार से सेवा, क्योंकि हम भी देखते थे साखी होकर के, ये लोग तो समझते थे कि शायद कोई हमारे में शक्ति है वो ध्यान में, लेकिन हम तो जानते थे, बहुत समझाते थे जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ भी होता था। खैर ये तो थोड़ा रेफरेंस में मैंने बता दिया कि बाबा कैसे करण करावनहार है और कार्य जैसे बाबा को करवाना होता है वैसे करवाता है। और इसमें जैसे आज का विषय है एकाग्रता के द्वारा एक रस स्थिति, तो आप सब जानते हो मुझे भी अभी ज्ञान में लगभग 60 वर्ष से ऊपर हो गया जैसे बहन जी ने बताया, लेकिन अभी भी मैं 100% गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरे में संपूर्ण एकाग्रता आई है। हाँ एकाग्रता की क्वालिटी बढ़ती बढ़ती बहुत बहुत अच्छी भी हो गई है, लेकिन संपूर्ण अगर आधा घंटा योग में बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा समय, लेकिन 25 मिनट 20-25 मिनट तक तो एकाग्रता का अनुभव होता है, होने लगा है। और 60 वर्ष के बाद तो आप समझो बाबा का एकाग्रता का पीरियड कितना कितना उच्च स्टैंडर्ड का होगा कि सिर्फ 33 वर्ष में ही 1967 में 66-67 में ज्ञान लिया और 1969 में तो बाबा अव्यक्त हो गए। तो सिर्फ 33 वर्ष के अंदर ही बाबा की एकाग्रता एकदम इतनी 100% हो गई थी। और जबकि बाबा कहता है देखो मैं तो उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ, यानी अगर कुमार प्रवृत्ति वाला और ये मेरे से तो कुमार कुमारियां बहुत आगे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया हमें ही 60 साल हो गए, तो बाबा को अगर देखें तो बाबा का जीवन तो हम सबके सामने खुली किताब है। बिल्कुल उनकी जीवन कहानी भी पढ़ी होगी जिन्होंने, मैंने भी कई बार पढ़ी है। और वास्तव में जब कभी कंपेयर करते हैं तो बहुत बहुत आश्चर्य कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते भी बाबा ने किस प्रकार से अपनी एकाग्रता को बढ़ाया। तो एकाग्रता आप समझते ही हैं विषय है, ये मन से संबंधित है, संकल्पों से संबंधित है कि हम जितना समय चाहें जिस स्थिति में चाहें और जिस रूप में चाहें उतना समय मन को उस निर्धारित एक स्थान पर जहां हम चाहें वहां एकाग्र कर सके, वो एकाग्रता। और हम सबका अनुभव है, हमारा तो अभी तक का भी अनुभव है कि 60 साल के बाद भी कि अभी भी बैठते हैं बहुत अच्छे समय तक एकाग्र रहता है, लेकिन मन के भागने की संभावना रहती है। जहां पर भी मन का लगाव झुकाव कोई बात होती है मन वहां चला जाता है। तो एकाग्रता के लिए हम सब जानते हैं, हम सबका भी ये अनुभव है, लेकिन इसके लिए हम क्या करें? तो बाबा ने समय प्रति समय कुछ बातें बताई हैं। एक तो बाबा ने कहा है कौन सी चीज आवश्यक है, एकांत। तो बाहर का एकांत भी और मन का एकांत भी। तो एकांत हम सभी चाहते हैं, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, सारा दिन कार्य व्यवहार में रहते हैं, थोड़ा समय सुबह प्रवृत्ति वाले और शाम को कुछ कुछ समय निकाल के बैठते हैं, लेकिन उतना समय बुद्धि संपूर्ण लगी रहे ऐसा शायद बहुत कम ही होता होगा। होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते हमें 100% तक लाना है। तो इसीलिए एकांत बाहर का भी चाहिए उसमें। मुझे याद है जब हम स्टूडेंट वगैरह थे तो घर में तो भाई 7 भाई बहन थे, परिवार था काफी बड़ा, एकांत शांति नहीं मिलती थी। तो बगीचे में कहीं एकांत में जाके कई बार पढ़ाई किया करते थे, बाबा भी कई बार इस बात को रेफर करता है। तो उसी रीति से हम सब प्रवृत्ति वर्ग वाले हैं, ये पूरा संभव नहीं है कि हम जब चाहे एकांत मिल जाए, लेकिन मिल सकता है सुबह के समय विशेष करके जब बहुत लोग सो रहे होते हैं ज्यादातर करके, उस समय भी एकांत मिल सकता है। और बाहर का एकांत तो इस परिस्थिति पर निर्भर करता है, और मन का एकांत जो है वो और भी ज्यादा कठिन है। बाहर का एकांत मिल भी जाए, लेकिन बाहर का एकांत मन का एकांत लाने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी एकाग्रता बढ़े, जिसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एकांत, तो उसके लिए हम जरूर बाहर के एकांत का सहारा ले सकते हैं। तो एक तो घर में भी ऐसा समय ढूंढें जब परिवार के अधिकतर सदस्य सो रहे, तो ये बाहर का एकांत और मन का एकांत। और इसके लिए लक्ष्य और क्या होना चाहिए, एक तो एकांत है, दूसरा इकोनॉमी। इकोनॉमी किसकी, धन की इकोनॉमी की बात तो हम सब जानते हैं प्रवृत्ति वाले, लेकिन इकोनॉमी माने संकल्प और समय की इकोनॉमी। तो इसीलिए इसके साथ पूरा हमारे जीवन का सब संबंध, श्वास, सब चीज इसके साथ आ जाती है। तो इसीलिए इकोनॉमी एक एक संकल्प की इकोनॉमी और श्वास की इकोनॉमी और समय की इकोनॉमी, तो इसके लिए निकालना ही पड़ेगा हमें समय। तो ये बचत, धन की बचत जैसे करते हैं, ऐसे संकल्प की बचत और समय की बचत, इकोनॉमी। तीसरी चीज है एकानामी, क्योंकि एकानामी माने एक। इकोनॉमी तो लौकिक से संबंधित जैसे हो गई, लेकिन एकानामी माने एक परमात्मा की बाबा के नाम में ही स्थित हो करके उसके ही याद में रहना, एकानामी ये। और इन सब से और भी पैरामीटर हैं, लेकिन मुख्य ये है और इन सब से प्राप्ति है हमारी कौन सी, हमारी स्थिति की, जो स्थिति एक रस स्थिति, जिसका वर्णन करते हैं हम सब लोग अपनी कर्मातीत अवस्था में भी, कि ऐसी एक रस स्थिति होनी चाहिए। एक रस स्थिति से तात्पर्य क्या है, कि विभिन्न परिस्थितियां भी आए, परिस्थितियां तो आएंगी जब तक जीवन है, ये निश्चित है कि परिस्थितियां रहेंगी, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, दुख सुख, हानि लाभ, जितने ऊपर प्लस माइनस जितनी परिस्थितियां आए, लेकिन ब्यूटी यही है कि बाबा के सामने भी इतनी परिस्थितियां आती थी, और हमने खुद भी देखा और सुना भी, खुद तो केवल 6-7 वर्ष ही देखा, लेकिन जब से यज्ञ की स्थापना हुई तब से जीवन कहानी में भी और दादियों के द्वारा भी इतने वर्णन सुने, कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा की स्थिति कभी डगमग नहीं हुई, अचल अडोल स्थिति। तो इस कारण से अब सुना तो है, अब हमें ये देखना है कि हम अपने ऊपर कैसे इसे लागू करें, क्योंकि बाबा तो कर्मातीत बन गया, लेकिन हम लोगों को भी तो बनना है। बाबा ने कहा मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हम सबको साथ ही जाना है परमधाम, और परमधाम तब तक नहीं जा सकते जब तक कर्मातीत नहीं बने। इसमें ममा की भी एक बात रिफर कर देता हूँ, हालांकि वो आज के संदर्भ से पूरा 100% नहीं, लेकिन ममा ने जब शरीर छोड़ा, और ये ममा का महीना कल ही समाप्त हुआ है, आज से नया महीना शुरू हुआ है, तो ममा ने जब शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ के ममा सूक्ष्म वतन में गई, तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, उन दोनों ने बस ममा का स्वागत किया, मिले और ममा को बोला, ममा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो ममा ने कहा, नहीं बाबा मैंने तो नहीं किया। तो बच्ची, फिर यहाँ कैसे आई हो? तो ममा ने कहा, हमारा ज्ञान भी समय प्रति समय रिफाइन होता चला गया है और हम सब यही समझते थे कि बस मम्मा बाबा तो नंबर वन और वन और नंबर टू हैं, बिना कोई भी सजा खाए इनको तो ऊपर जाना ही है परमधाम। तो मम्मा ने कहा, बाबा पर परमधाम जाने के लिए आत्मा आई है। तो बच्ची, अभी तो परमधाम नहीं जा सकते जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है। तो क्योंकि पहले तो ज्ञान यही था, हम सबको इकट्ठा ही जाना है, कोई मम्मा पहले या बाबा पहले चला जाए, उस वक्त तक के ज्ञान में तो ये सब था ही नहीं। तो इसीलिए तब कहा, तो मम्मा ने कहा कि बाबा, मतलब बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तो जा नहीं सकती जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है, तो जाओ, तुम्हारा शरीर नीचे हिस्ट्री हॉल में रखा है और बाबा भी योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। तब तो साकार में बाबा थे और जो भी बच्चे थे यहाँ पर, सब बच्चे भी आवाहन कर रहे हैं, जाओ और अपने शरीर तुम्हारा रखा है, शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मम्मा ने कहा, जी बाबा, और मम्मा आई नीचे और काफी समय तक मम्मा नीचे रही। और उसके बाद मम्मा फिर जब ऊपर गई तो फिर मम्मा से पूछा बाबा ने, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर सकी क्योंकि शरीर तो ठंडा पड़ गया था, मैंने बहुत प्रयास किया कि शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकी मैं, और शरीर में प्रवेश किया बिना तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे होता, क्योंकि कर्मातीत स्थिति का उस समय तक का जितना भी ज्ञान था यही था कि कर्म करते हुए कर्म से न्यारा रहना, देखते हुए भी जैसे न देखने की स्थिति, सुनते हुए भी न सुनने की स्थिति। तो वो तो शरीर में जब हो तभी कर सकते हैं। तो बाबा ने मामा ने जब ये बताया तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तो फिर परम धाम तो जा नहीं सकती, परम धाम में तो जिस सीट को छोड़ के आई हो तुम, जहाँ परम धाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर वो तो बहुत बहुत हाईएस्ट पवित्रता की सीट है और वो छोड़ के आई हो, अभी तक तो अगर उस स्थिति का अनुभव नहीं किया है तो अभी तो जाओ नए पार्ट में, और नए पार्ट में जाके पुरुषार्थ करके फिर कर्मातीत स्थिति का अनुभव जब करोगी और उसके बाद फिर जब जाओगी तब परम धाम जा सकेंगे। तो ये बात बाबा ने ये भी कहा कि सब बच्चों को बताना कि बच्चों को भी ये ही, कभी भी अपने इस शरीर से हम कंटाले नहीं, दुखी या शांत ना हो। कई बार होता है ना, अरे मेरा शरीर बीमार है और अगर अच्छा शरीर होता मैं भी सेवा करती। कई बार माताएं कहती, अरे हमें भी मालूम होता ज्ञान पहले मिल जाता तो विवाह से पहले हम भी कुमारी अवस्था में यज्ञ का ज्ञान लेकर के समर्पित हो जाते। बहुत सारी बातें आती हैं, किन्हीं के पास धन नहीं होता मगर नए जन्म में जाएंगे, अच्छे जन्म में जाएंगे, बाबा ने कहा ही है, धन होगा धन से सेवा करेंगे आदि आदि। लेकिन कभी भी बाबा ने इस समय जो हरेक को शरीर दिया है वो 100% पर हाईएस्ट दिया है, जितना उन्हें मिल सकता था वो हाईएस्ट दिया है। इसीलिए इस शरीर में हम जितना भी पुरुषार्थ कर सकते हैं कर्मातीत स्थिति का, उतना हम किसी भी जन्म में नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी ये संकल्प ना है मैं ये शरीर छोड़ूं, चाहे जितना बीमार हो, जितना तकलीफ हो, जितना संबंधों में कटुता हो, कुछ भी हो लेकिन नहीं, मुझे तो इसी शरीर में संपूर्ण बनना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है आदि आदि ये सब हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारा स्थिति है, और ये स्थिति तभी आएगी ही जितना जितना हम अधिक से अधिक विकर्मों को भस्म करते जाएंगे और जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता की पराकाष्ठा तक हम पहुंचेंगे। अगर आज भी हम एनालिसिस करें, आप सबसे अच्छी जगह बैठे हो, अपने अपने प्रवृत्ति में तो ड्यूटी होती है, कई बच्चे होते हैं, परिवार होता है, कई परिस्थितियां होती हैं, यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं। किसी भी दिन एनालिसिस भी करेंगे और बैठेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में संपूर्ण एकाग्रता से तो अभी हम काफी दूर हैं। जितनी बाबा चाहता है एकाग्रता कि हमारा ध्यान जो जितना समय चाहे जिस स्थिति में चाहे उस स्थिति में बैठ सके, अभी कदाचित मैं तो ये समझता हूँ अपने मापदंड के आधार पे कि शायद अभी इतना कोई कह नहीं सकेगा दिल से कि मेरा 100% एकाग्रता है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए एकांत, दोनों बाहर का अंदर का एकांत, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा इकोनॉमी एकानामी, इकोनॉमी और इकोनॉमी में अंतर। इकोनॉमी अंग्रेजी का वर्ड है बचत, समय की और संकल्पों की, और एकानामी यानी एक के ही नाम में स्थित रहना, बाबा की याद में एकाग्रता, उससे तात्पर्य है, और फिर वही एक रस स्थिति की तरफ ले जाएगा। अब ये भी अवस्था कैसे आएगी, ये कहना तो इजी है कि बस बाबा को ही याद करें, और इसके लिए जो हमारा जीवन है ना, वर्तमान जीवन, तो जैसे कोई कोई आर्ट सीखते हैं, गाने की कला होती है, नृत्य कला होती है आदि आदि, तो कोई भी आर्ट जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्शन आती जाती है। तो इसी तरह हमें कुछ दो तीन चार आर्ट जीवन में सीखनी पड़े, सीखने क्या जानते तो हैं ही हैं, उन्हें बढ़ाते रहना पड़े। तो पहली है एक जो सिंधी आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग माने किस प्रकार से जीवन। और उसके लिए वैसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन एक मुख्य बात है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, हमें बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे आप प्रवृत्ति में हैं तो ये बैलेंस करना आना चाहिए कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, बैलेंसिंग एक ये। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, जब ज्ञान में आते हैं बहुत नशा खुशी होती है, इधर पलड़ा भारी हो जाता है तो कई बार उधर का हल्का हो जाता है। प्रवृत्ति वाले सब बोलते हैं इनका तो ध्यान ही नहीं है, उधर ही रहते हैं, ऑफिस से भी उधर, या वैसा वर्षा, जब उधर का नहीं होता इधर होता है तो इधर भारी। तो बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। एक दूसरा बैलेंस की आर्ट ऑफ लिविंग में है, वो बैलेंस है बिजी और इजी का बैलेंस। बिजी और इजी कार्य तो करना ही है, अक्सर करके हम कहते हैं कि भाई समय नहीं है, दुनिया वाले भी बोलते हैं, कई बार हम लोगों के मुख से भी निकल जाता है इस चीज के लिए समय नहीं है। तो बिजी भी रहे लेकिन इजी भी रहे, और प्रकृति में हमारा शरीर ही बैलेंस के हिसाब से बना है पूरा। ये सारी कलाएं संभव ही नहीं बल्कि बहुत इजी है हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो शरीर का बैलेंस दो टांगों पर दिया है, तो दो चीज होती हैं तभी बैलेंस की बात उठती है। तो दो बैल हैं, एक अगर थोड़ा तकलीफ हो जाए, खराब हो जाए कोई भी, तो उतना तेजी से कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये भगवान ने कहे या रामानुसार मस्तिष्क भी जो है ना उसमें भी बैलेंस जो है, एक लेफ्ट ब्रेन है एक राइट ब्रेन है, तो ब्रेन के भी दो पार्ट हैं और हम जानते हैं सब ब्रेन और मन अलग अलग है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंग है जबकि ब्रेन शरीर का अंग है, लेकिन मन का ब्रेन से बहुत बहुत गहरा संबंध है क्योंकि मन जो सोचता है वो ब्रेन के द्वारा इस शरीर में इम्प्लीमेंट करता है, यानी प्रयोग में इस शरीर के द्वारा आता है। मन सोचेगा कि हाथ को उठाओ इधर लेफ्ट, तो मन ब्रेन को सिग्नल भेजेगा और ब्रेन के द्वारा जो ये नसें नाड़ियां ये सब है ये इधर सिग्नल आएगा और तब ये कार्यान्वित होगा। तो मन जो है ब्रेन के द्वारा ही सारा कार्य करता है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आर्ट ऑफ लिविंग, तो लिविंग तो हमारा शरीर के द्वारा ही होता है ना, जितना समय चाहे आराम भी करें वो भी लिविंग का एक पार्ट है, तो जीवन जीने की कला का एक पार्ट ये लिविंग है, तो इसीलिए लेफ्ट एंड राइट। बस इसके अंतर को समझ लेना है, लेफ्ट पार्ट का क्या काम है राइट पार्ट का क्या काम है। हम सब शरीर की बात तो जानते हैं भाई, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का है बोलना या खाना पीना आदि सब बचपन से जानते हैं, लेकिन ये ब्रेन के जो लेफ्ट एंड राइट है ये जान करके प्रैक्टिकल में अगर कर ले तो तुरंत ही हमारा एकदम बैलेंसिंग का मूड हो जाएगा और बैलेंस करके हम चलने की शक्यता रख सकेंगे। तो लेफ्ट पार्ट जो है ना ब्रेन का, वो ज्यादातर हमारी लौकिक और भौतिक चीजों से संबंध रखता है, जितना फाइनेंस है, अकाउंट है, घर गृहस्थी का काम है, खाना पीना है, नौकरी जाना है, धंधा दौरी करना है, जितनी चीजें हैं सब्जेक्ट की, अकाउंट आदि, पैसे कमाना, ये सब लेफ्ट से संबंधित है, तो बाएं पार्ट से। और 90% लोग दुनिया के 90 ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ही अधिक यूज करते हैं क्योंकि भौतिक दुनिया में रहते हैं, भौतिक कार्य ही करते हैं ज्यादातर, लेकिन राइट पार्ट जो ब्रेन का है वो ज्यादातर आत्मा के गुणों से संबंधित है। ब्रेन जो है राइट पार्ट, जो आत्मा के हम 7 गुण बताते हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति, ये सब जो हमारे राइट पार्ट से संबंध रखता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ज्ञान में आते हैं हम राजयोगी हैं, तो राजाई का भी काम करते हैं यानी स्थूल काम भी और योग भी, तो योग है और कर्म योगी बोलते हैं, तो कर्म का पार्ट ये लेफ्ट पार्ट है और कर्म योगी योग का पार्ट ये राइट है। तो सच्चे अर्थों में हम कर्म योगी तब हो सकेंगे जब लेफ्ट एंड राइट का परफेक्ट बैलेंस हो। तो ये कैसे करेंगे लेफ्ट एंड राइट का बैलेंस है, लौकिक दुनिया में पहले दिन से जब से आप आते हैं तब से यही सीखते हैं कि भाई पहले तक तो उससे एक दिन पहले तक जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तब तक तो हमारा पूरा लेफ्ट ओरिएंटेड कार्य था, भौतिक दुनिया से संबंधित, जो भौतिक संबंध है उनसे संबंधित आदि, लेकिन जब ज्ञान में आने लगते हैं और समझ आने लगती है तो राइट पार्ट यानी कि जो आत्मा के गुणों से संबंधित है, सुख शांति पवित्रता आनंद ज्ञान, तो फिर पवित्रता का भी महत्व हमें समझ आने लगता है, तो वो ज्ञान है शक्ति है आत्मा की। तो राइट पार्ट का भी जब हिस्सा होने लगता है यहाँ पर, तो दोनों का बैलेंस जब होता है कर्म योगी बन जाते हैं और उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि दोनों बातों का बैलेंस रख के चले। अब बहने भी हैं, भले समर्पित जीवन है उनका, पूरा समय ईश्वरीय सेवा में रहता है, लेकिन सारे लौकिक कार्य भी तो होते ही है भाई, जो भी है जो है उसमें भोजन संबंधित सारा ज्ञान। तो जब लौकिक और अलौकिक का पूरा बैलेंस होने लगता है तो ये दोनों एकाग्रता का प्रतीक है, यानी कि बैलेंसिंग मोड में हम हमेशा रहें। पांच छह चीजों की बैलेंस आपको सहज बता देते हैं, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। दूसरा है अलर्ट एंड रिलैक्स का बैलेंस। जब लेफ्ट पार्ट माइंड का होता है तो कोई भी कर्म करते हैं हम तो अलर्ट, सावधानी पूर्वक कर्म करना है अलर्ट, लेकिन अलर्ट के साथ साथ हम रिलैक्स भी रहे, बस माइंड हल्का रहे और अलर्ट एंड रिलैक्स का बैलेंस रहेगा, जीवन बिल्कुल वो कर्म योगी की तरह चलता रहेगा। बिजी और इजी का बताया आपको, बिजी ये लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट इजी का है एकाग्रता में। तीसरी चीज है जो मनुष्य को क्या, जैसे अक्सर हम बताते हैं ना, लव एंड लॉ का बैलेंस। लव यानी प्रेम स्नेह भी हो एकाग्रता में, और लॉ यानी डिसिप्लिन भी हो। बच्चे को भी प्रेम भी दो लेकिन साथ में डिसिप्लिन में भी रखें। जब दोनों का इम्बैलेंस होता है तो ही बच्चा बिगड़ता है। या तो लव ज्यादा दे दिया, डिसिप्लिन उसे नहीं बताया पूरा, या डिसिप्लिन में इतने कड़क रहे कि बच्चा पास में आने से भी डरे और कोई भी बात अपनी ना बताए, लव का पार्ट हल्का रहा वो भी नहीं। लव एंड लॉ का बैलेंस। इसी प्रकार से और क्या क्या जीवन में बैलेंस है, एफिशिएंसी और एफेक्टिवनेस, उनका बैलेंस। एनी हाउ ये उसका सब्जेक्ट है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता। मैनेजमेंट का ऐसे करीब 15 बैलेंसेस हैं, उसी में ही समय निकल जाएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में अगर एक शब्द में समझें, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का, दोनों का बैलेंस। मन से हम निवृत्ति स्थिति में रहें, भौतिक रीति से प्रवृत्ति की स्थिति में, जो भी प्रवृत्ति के आवश्यक कार्य हैं वो सारे करें, नहीं तो जब आज ज्ञान में होते हैं तो इम्बैलेंस जब जैसे ये होता है तो थोड़ा झगड़ा होना स्वाभाविक है प्रवृत्ति के अंदर। तो एकाग्रता से एक तो आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, LEAVING, और वो था लिविंग LIVING। लिविंग माने जीने की कला, रहने की कला, और लिविंग माने छोड़ने की कला। अक्सर करके प्रवृत्ति में क्या होता है, हम छोड़ नहीं पाते हैं। कोई भी पुरानी चीज भी होती है, नई भी आ गई तभी भी अरे संभाल के रख लो, कभी किसी वक्त काम आएगी, ऐसे करते करते बहुत हम सभी का अनुभव और कचरा बढ़ता जाता है, और उसके साथ साथ माइंड का भी कचरा बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें जिनकी, और इसका बेस्ट प्रिंसिपल ये है, अगर कोई चीज हमने 1.5-2 साल तक यूज ही नहीं की है, इसका मतलब उस चीज को फेंकने का समय आ गया है। आंख बंद करके उसे फेंक करके, और क्यों? क्योंकि वो स्थूल में तो जगह घेरती है लेकिन हमारे माइंड में भी जगह घेरती है। तो इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला, अगर ये स्थूल छोड़ने की कला नहीं हुई तो हम लोगों के व्यवहार में भी कई बार छोड़ नहीं पाते उसका व्यवहार। एक व्यक्ति 10 बार बहुत अच्छा रहा, एक बार उसने कुछ ऐसा कर दिया, हमारे संबंधों में खराश आ गई, बस उस बात को हम छोड़ नहीं पाते, भूल नहीं पाते। और भूल नहीं पाते तो क्या हो जाता है, वो न भूलने के कारण वो व्यक्ति ने तो जो करा वो करके भूल गया होगा और चला गया, उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम हमें है, हम भूल नहीं पाए। जैसे उस व्यक्ति को कभी देखेंगे हमारे मन में वही पुरानी घटना याद आ जाएगी, हम उसे क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो आर्ट ऑफ लीविंग का, छोड़ने की कला यानी भूलने की कला, वास्तव में ये हमारे अंदर इनबिल्ट कला है। जब भी बच्चा पैदा होता है ना, तो वो दो शक्तियां उसमें होती हैं, एक तो याद रखने की कला, एक भूलने की कला। हम सबके अंदर ये कला है, लेकिन विडंबना क्या है जीवन की, कि जो हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो वर्षों तक याद रहती है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। बस दूसरे की कमी, कमजोरी, कोई ऐसी घटना नेगेटिव, उसे हमें तुरंत भूलना चाहिए। और ये कला आती है जितना हम योग का अभ्यास करते जाएंगे ना, ये कला आती जाएगी। अक्सर करके इसको हम इससे पहचान सकते हैं, आप सब लोग ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद सब, क्योंकि हमारा संसार ही बदल जाता है, दुनिया में लौकिक लोगों को देखते हैं बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं, यहाँ देखते हैं सब दिव्य परिवार पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, हर एक कितना मीठे व्यवहार से बोलता है, बस इस परिवार की तरफ खिंच जाते हैं। ठीक भी है, लेकिन इस परिवार में चलते चलते भी हमारे वो पुराने संस्कार जो 63 जन्मों के हैं, द्वापर युग से हैं, वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। किसी के साथ तो हमारा अति स्नेह हो जाता है, किसी से कोई गलतफहमी हो गई, कोई बात हो गई, बस उससे कटुता होनी शुरू हो जाती है, बोलना भी नहीं चाहते। वो व्यक्ति सामने से भी अगर आ रहा है तो हम इधर से निकल जाएंगे, वो उधर से, हम सोचते हैं, हमारा अहंकार बोल सोचता है मैं क्यों उससे बोलूं, क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, हम दोनों में इस वजह से बोलचाल खत्म हुई। वो व्यक्ति भी इसी रूप से बोलता है तो बोलचाल टूट जाती है, स्नेह नहीं रहता आपस में, ओम शांति नहीं होती है। तो ऐसे संस्कार लेके हम सतयुग में जा सकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सतयुग में तो जो संस्कार हमें मालूम है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये जितना संस्कार है उसमें तो ये आता नहीं संस्कार। तो क्या करना चाहिए दादी, अक्सर करके मधुबन में तो लोगों को बिठाती थी, किन्हीं किन्हीं के बीच में आपस में ऐसे संस्कार होते थे तो बोलते थे बैठो आपस में। और यहाँ पर भी दादी हमेशा आप जिस व्यक्ति के साथ, जिस बहन के साथ, जिस भाई के साथ आपके ये संस्कार है, तो आप जाओ, अपना अहंग तोड़ना पड़ेगा पहले, नहीं तो आपका अहम बोलेगा मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, गलती उसकी है, क्योंकि हमारे देखने की दृष्टि वैसी है ना, तो नहीं जाएंगे, नहीं अपना अहम नहीं, मुझे तो सतयुग में जाना ही जाना है, सतयुग में ऊंच पद पाना है, उसकी तुलना में ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, इस अगर मैं अपना अहम कायम रखता हूँ, अहंकार, तो बहुत बड़ी चीज, 1000 रुपए कमाने की तुलना में मैं 1,00,000 वेस्ट कर रहा हूँ एक तरीके से, पैनी वाइज पॉन्ड फुलिश अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो किसी भी तरह हम तोड़ के जाए, आइए बहन, आइए भाई, हम लोग बैठते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों के बीच में पहले जितनी स्नेह था, प्यार था, वो आजकल उतना नहीं रहा है, आइए उसे हम खत्म करें। तो इसीलिए ये बहुत एक बार में हो सकता है ना भी बैठे, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ऊपर से ऐसे बोल देंगे अंदर कटुता भरी हुई होगी, एक बार दो बार तीन बार फिर बैठेंगे तो बैठने से जरूर थोड़ा कम होगा और फिर अपना दिल भी हल्का हो जाएगा उनका भी। तो आर्ट ऑफ ये लिविंग, छोड़ने की कला, पुराना छोड़ने। नहीं तो किसी किसी की बात हम महीनों तक वर्षों तक जीवन भर तक कायम रखते हैं और वो बात जो है हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। हमारी उन्नति की कॉस्ट पर वो किसी की छोटी सी बात होती है तो नुकसान तो सारा हमें होता है पूरा का पूरा। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। और ये तब होगा जब तीसरी आर्ट होगी आर्ट ऑफ लविंग, स्नेह। सबसे बराबर भाव से प्रेम प्यार स्नेह की कला तो ये होगी। तो ये तीनों बातों से एकदम एकाग्रता की शक्ति का आपको एकदम ऊंचाई का अनुभव होगा। लविंग हर एक से स्नेह। तो वो कैसे होगा, वो बाबा ने मुरली में बताया है, भक्ति मार्ग में भी कबीरदास जी बोल के गए हैं। हा? क्या हा? कि इसके अंदर अलग अलग प्रेम भाव सबसे समान भाव से हो। भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है अंत समय, तो अंत समय दो ही प्रकार के व्यक्ति याद आते हैं, या तो जिससे बहुत स्नेह हो, पोता पोती हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता कोई बहुत प्रेम हो, या जिससे कुछ खटपट हो, दुश्मनी हो। ये दोनों दो प्रकार के व्यक्ति। तो मुझे देखना है कि ऐसे कोई न रहे, मेरा प्रेम भाव सबसे समान भाव से हो, हरेक से, न किसी से ज्यादा प्रेम हो न किसी से कम प्रेम हो। क्योंकि ज्यादा प्रेम होगा तो वो उसको बात बताए बिना मैं रहूंगे नहीं आत्मा, कोई भी बात हुई मुझे पता चली बस दिल में होगा इसे बताऊं। जिससे ज्यादा स्नेह होगा और जिससे कम स्नेह होगा उससे हम बात भी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं, सबसे स्नेह बराबर हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस ना किसी से अति प्रेम हो ना किसी से कम प्रेम हो। अब ये देखना है कर्मातीत अवस्था की तरफ। बाबा का यही देखा, सबसे प्रेम था और हरेक को ये महसूस होता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं। बाबा एकदम बस आओ बच्चे मिलते थे और हम चुंबक की तरह खिंचे चले जाते थे। बस बाबा से मिलते थे और ब्यूटी ये होती थी बाबा की बाह में जाते ही विदेही हो जाते थे अशरीरी, क्योंकि बाबा का स्पर्श भी इतना मैग्नेटिक था, दृष्टि भी इतनी दिव्य और अलौकिक थी। बस दृष्टि दी बाबा ने और बस विदेही हो गए। फिर बाबा को ही हमें जैसे देह में लाना पड़ता था, हाँ बच्चे थोड़े समय में, कुछ सेकंड के बाद एक दो मिनट में आओ बच्चे आओ, ऐसे प्यार से बाबा स्नेह से थपथपाते के नीचे लाता था, टोली खिलाते थे बाबा। और फिर बाबा कहते थे अच्छा बच्चे कुछ पूछना है, हम लोगों को कुछ पूछना होता था तो पूछते थे और फिर चले जाते थे। तो अभी अंत समय में ये तीनों आर्ट, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लविंग एंड आर्ट ऑफ, तीसरी कौन सी बताई, लिविंग लिविंग एंड लविंग। लिविंग और लिविंग में भाई लोग तो समझ जाएंगे, हिंदी में मतलब है छोड़ने की कला, जीवन जीने की कला और आर्ट ऑफ लिविंग प्रेम स्नेह करने की कला। तो अंत समय में ये ही कला काम में आएगी, छोड़ने की कला। अब एक रस स्थिति का संबंध एकाग्रता से बहुत बहुत गहरा है। कैसे पता चले हमारी एक रस स्थिति होती चली जा रही है, तो एक रस स्थिति का एक तो मोटे तौर पर तो यही है कि परिस्थितियां जितनी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी स्वस्थिति उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। स्वस्थिति विपरीत परिस्थितियों को भी दबा दे, हमारी स्वस्थिति उन पर विजय प्राप्त कर ले। वो अपने अपने लिए हर एक को बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बाबा की, तो बाबा को इतनी एज थी, यहाँ ठंडी का मौसम भी बहुत होता है, कई बार मुरली चलाते चलाते खांसी भी आती थी। तो बस बाबा ने क्या इसके लिए नियम बनाया हुआ था, अपने पास ही वहां पर श्री कृष्ण का चित्र रखा था, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का, और बस जैसे ही बाबा को बहुत कई बार खांसी आती थी और हमें लगता था बाबा की आंखें भी जैसे गीली हो जाती थी, इतना खांसी का प्रकोप जैसे होता था, तो बस बाबा जैसे आए, बस देखो बच्चे अभी तो ये खांसी है और तकलीफ दे रही है, क्योंकि शरीर भी तमोप्रधान है, आत्मा भी इतने जन्म लेते तमोप्रधान हो गई है, और कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कल सतो प्रधान शरीर मिलेगा, कल आत्मा भी सतो प्रधान होगी, तो बस बाबा को तो इसी की खुशी है। बाबा तो खुशी में नाचता है, कई बार खग्गियां मारता है, तुम बच्चों को भी खुशी में कोई भी तकलीफ हो खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे कई बार करके बाबा कि इतना वृद्ध बाबा जब वो खुशी में एकदम जो तकलीफ आई है उसको ओवरलुक करके खुशी को बढ़ा के तकलीफ की महसूसता को कम कर सकता है, तो हमारा आप नहीं कर सकते क्या? इतनी खांसी आती थी फिर भी बाबा भूल करके, और फिर थोड़ी देर में ही खांसी कहाँ गई, बाबा फिर से मुरली चलाने लगता था एकदम। तो ऐसे ही परिस्थितियां हम जानते हैं कि मेरे लिए कौन सी परिस्थिति ज्यादा खराब है, कम खराब है, किस परिस्थिति से मेरी अवस्था बिगड़ती है क्या, तो उसके लिए हम अपने लिए ही सॉल्यूशन ढूंढ के रखें, नियम बनाए। तो इस कारण से मानो किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत खराब किया है, तो अक्सर जब भी आते हैं बोलचाल होती है और कटुता आती है, तो बस अगर शुरुआत करने के लिए थोड़ा बहुत अवॉइड करें उनसे मिलना, और जब हमारी स्थिति और अच्छी हो जाए तब सहनशीलता में का हमें अपने ऊपर और भरोसा हो जाए, तब हम उनसे बात करने का प्रयास करें, नहीं तो पहले ही स्थिति में करेंगे तो वो एक बोलेगा आप दो बोलेंगे, फिर वो तीन बोलेगा आप चार बोलेंगे। लेकिन जब आपने अपना निश्चय दृढ़ कर लिया, दृढ़ता आई, तो फिर आप तो उतने सहनशील हो जाएंगे और इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो अपने लिए अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढना चाहिए, एक तो ये स्थिति होनी चाहिए। और साथ में क्या स्थिति, एक रस स्थिति की विशेषता कि जितनी जितनी हमारी एक रस स्थिति होती जाएगी ना, उतना उतना हम, क्योंकि उस एक रस स्थिति का आनंद आने लगेगा, हम देख रहे हैं परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मैं अचल अडोल हो रहा हूँ, परिस्थितियां मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रही, तो अपनी विजय पर तो खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। तो ऐसी स्थिति में जब अपनी स्थिति को बीच में बाबा ने टाइम टू टाइम बताया है, अचल अडोल अंगत की तरह हमारी स्थिति रहे, और वो स्थिति ऐसे ही रहे बनती जाएगी जब हमारी इंटरनल चेकिंग भी होती रहेगी, लेकिन सारा दारव मदार काफी हद तक एकाग्रता के है। एकाग्रता हमारा पुरुषार्थ है, एक रस स्थिति प्रारब्ध है उसकी, तो इसलिए अभी हमें इस स्थिति की प्राप्ति के लिए जितना वो करते रहेंगे, बाबा का हमने देखा कितनी बार कोई आके बताता था बाबा ये हो गया, स्थिति भयानक होती थी, फॉर एग्जाम्पल एक बात तो हमारे सामने की है कि आपने सुना होगा कलकत्ता में प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी, टेंट लगाया था बड़ा, सारे चित्र लगाए थे जो हमारे थोड़े कथित थोड़ा नेगेटिव फीलिंग रखते थे दुश्मन, उन्होंने आग लगा दी, पूरा टेंट भी जल गया, पूरी प्रदर्शनी भी जल गई। बाबा को बताया गया, बाबा ने कहा कि अच्छा सुना बाबा ने, हम भी बाई चांस तो उधर वहां पर बाबा के चेहरे पर या उस पर, अच्छा बच्चे अच्छा बस सुना बस, कोई भी क्यों हुआ कैसे हुआ, बाबा ने फिर बैठ के बताया हर चीज का सॉल्यूशन, पहली बात 5 मिनट योग करो 3 मिनट, तो जिससे हमारी मन का में जो उद्वेग है वो खत्म हो जाए। अच्छा बच्चे चलो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, 2-3-5 मिनट सब शांति में बैठ गए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, उन्होंने करा थैंक्स टू देम, क्योंकि उन्होंने हमें आगे के लिए हमेशा के लिए सावधान किया, हर नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है उसका भी रिजल्ट देखा। फिर बाबा ने उसका बताया कि बच्चे आगे से जब करो हो इंश्योरेंस वगैरह करके रखो सब चीज का, जिससे कि आर्थिक रूप से वो न हो, ऐसे ऐसे करके बाबा ने सावधानी दी। बच्चों ने बार बार कहा, हमारे यहाँ 3 टॉप क्लास लॉयर्स थे कानपुर के उस समय, संतराम जी और मोती चंद जी त्रिलोक चंद जी, तीनों बाई चांस इधर ही थे जब इतनी बड़ी घटना, तो वो बाबा को बार बार बोलते थे बाबा हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि अगर हम उनपे केस करें 100% हम जीत जाएंगे, बिल्कुल हार ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, बच्चे चाहे जैसे हो, बाप जानता है ये समय ही तमोप्रधानता का चल रहा है और हर एक आत्मा तमोप्रधान है, तो वो भी उन्होंने भी ऐसा कर दिया तो क्या हुआ। तो बाबा के ना अपनी योग की अपनी अवस्था बिगड़ी, ना उन्होंने एकाग्रता में भंग हुआ, और ऐसी स्थिति में बाबा ने करके दिखाया। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी ब्रह्मचारी तो बन गए, अब ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलना है। इसीलिए एक बार पुनः हम लोग वो बाबा की जीवन कहानी भी पढ़े, जहां जहां जीवन के प्रसंग काफी आते हैं वो पढ़े, उससे क्या होगा कि हम लोग फाइनली अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे और एकाग्रता में स्थित हो सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।